हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। अत्यंत ही हर्षित मन और प्रफुल्लित चित्त के साथ आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण को समस्त वेद पुराण शास्त्र उपनिषद का राजा कहा जाता है, ग्रंथ राज, किंग ऑफ द लिटरेचर। यानी समस्त वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ सिरमौर है तो वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण। वास्तव में भक्तों, जो भागवतम महापुराण भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था वो 100 करोड़ श्लोक वाला भागवतम महापुराण था। लेकिन वेद व्यास जी की कृपा से जब वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग के मनुष्यों के पास इतना समय नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इतना भक्तों का संग नहीं है, तो वो इतना बड़ा शास्त्र नहीं अध्ययन कर सकेंगे, तो वेद व्यास जी की कृपा से वही 100 करोड़ वाला श्लोक वाला भागवतम उन्होंने संक्षिप्त करके हमारे पास 18,000 श्लोक में दिया। इस श्रीमद् भागवतम को पंचम वेद कहा जाता है। इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम वेदम, ये पांचवा वेद है। सारे वेदों को निगम कहा जाता है और श्रीमद् भागवतम 1.1.3 में कहा गया, निगम कल्प तरु गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संवृतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। ये श्रीमद् भागवतम समस्त वेद शास्त्रों का पका हुआ फल है। यानी सारे वेद शास्त्रों का ये निचोड़ है। कोई कह सकता है अगर सारे वेद शास्त्रों का इसमें निचोड़ है तो वो जो सारे वेद शास्त्र पढ़ते हैं और जो खाली भागवतम महापुराण पढ़ते हैं तो एक ही बात है, तो फिर अगर सारे वेद शास्त्र भी पढ़े तो भी चलेगा ना। लेकिन वेद शास्त्र जैसे उसको एक वृक्ष की तरह बताया गया। अब वृक्ष में क्या होता है, जड़ होता है, तना होते हैं, डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं, कांटे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन वृक्ष के अंदर एकमात्र फल एक ऐसी चीज है जो हम ग्रहण करके आनंदित हो सकते हैं। इसी तरह वेदों में बहुत सारी ऐसी चीजें, आगे हम जाके पढ़ेंगे केतव चीजें। श्लोक नंबर 1.1.2 में कहा गया है, धर्म प्रोजित काय तवोत्र परमो निर्मत सराणाम। इसमें क्या है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो त्याज्य हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो निकालना पड़े। ऐसा फल है जिसके अंदर न छिलका है न गुठली है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 45 में बताते हैं, त्रैगुणीय विषया वेता निस्त्रैगुणीयो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, निस्त्रय गुणियों भव अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। यानी कि वेदों में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें चिपकना नहीं है। भगवान ने पहले भी बताया, यामिमां पुष्पताम वाचम प्रवेदन्त्य विपश्यतः वेदवादरतः पाठ नान्यदस्तीति वादिना। अर्थात अल्पज्ञ मनुष्य जिनके पास ज्यादा अक्कल नहीं होती है, वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग के प्रति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। वेदों में बहुत सारे कर्म कांड, ज्ञान कांड और ये बहुत सारे कांड बताए गए हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कर्म कांड ज्ञान कांड केवल अवशैर भांड, ये सिर्फ विष के प्याले हैं। कर्म कांड और ज्ञान कांड यदि अगर कुछ वास्तव में ग्रहण योग्य है तो वो है भक्ति, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम शास्त्र अध्ययन करने का। और जितने भी धर्म के अनुष्ठान किए जाते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, जो कि केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। और यदि भागवतम महापुराण को हम श्रवण करते हैं तो उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के जो संबंध हैं अपने भक्तों के साथ वही वर्णित किए गए हैं। तो यदि कोई श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करता है, ऐसा कहते हैं, यस्य भागवतम शास्त्रम वाच्यते अर्थनोनिशम, यानी कि यदि कोई अर्थ के साथ, जैसे श्रीमद् भागवतम के एक एक शब्द के, एक एक श्लोक के एक एक शब्द को, अर्थ को यदि हम समझते हुए उसको अध्ययन करते हैं, जन्म कोटि कृतम पापम, करोड़ों करोड़ जन्म के, कोटि कहते हैं करोड़ों जन्मों के अपराध नष्ट हो जाते हैं, नश्यत नात्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है कि कृष्ण प्रेम छलछला उठेगा। यदि हम कृष्ण के प्रति श्रवण करते हैं, यदि हम कृष्ण की दिव्य लीलाओं के प्रति श्रवण करते, वास्तव में भक्तों ये भागवतम महापुराण कृष्ण से अलग नहीं है, ये साक्षात भगवान हरि का वांग्मय स्वरूप है। शास्त्र कहता है तेनी वांग्मय मूर्ति, यानी साक्षात मूर्ति है भागवत महापुराण, साक्षात भगवान ही है। प्रत्यक्षावर्तते हरि, साक्षात प्रत्यक्ष भगवान हरि श्रीमद् भागवत महापुराण के स्वरूप में हमारे समक्ष खड़े हैं। और दर्शनात् सेवनात् श्रवणात्, यदि केवल भागवत महापुराण का कोई दर्शन भी कर लेता है, पढ़ना और श्रवण करना तो बहुत बड़ी बात है, केवल यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन हो जाता है, केवल उसको सेवना, ऐसे बोलते ना, श्रीमद् भागवत महापुराण की सेवा दो प्रकार से की जाती है। प्रथम सेवा तो उसका श्रवण करके, उसका अध्ययन करके की जाती है। लेकिन यदि कोई केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम कर देता है, केवल उनकी आरती कर लेता है, तो ये भी भगवान से, और इसके लिए भी कहते हैं दर्शनात् सेवनात् श्रवणात् पाठात् पापमोचनम, किसी भी तरीके से यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण के संपर्क में आ जाते हो तो समस्त अपराधों का क्षय हो जाता है और आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ही जाता है। क्योंकि जो भगवान के विषय में सुनता है, जो भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण, जो साक्षात भगवान हरि ही है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र उद्धव, जब भगवान ने उन्हें बताया कि उद्धव अब इस पृथ्वी पर मेरा कार्य समाप्त हो गया है और मैं पुनः अपने गोलोक में जाना चाहता हूँ, तो उद्धव बहुत रो रहे थे। बोले, नहीं प्रभु, आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, आप हैं तो धर्म की रक्षा हो रही है, आप चले जाओगे तो धर्मम का शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाएगा, आपके बारे में केवल सुनने से धर्म प्राप्त होता है, आपके बारे में विचार करने से धर्म प्रकट होता है। यदि आप अलग अलग स्थानों में कोई भी लीला करते हो, उसकी चर्चा पूरे भूलोक में फैल जाती है, और आपके विषय में जब कभी कोई भी व्यक्ति श्रवण करता है, सुनता है कि आज कृष्ण ने यह लीला की है, आज कृष्ण यहाँ गए हैं, आपके विषय में बात होती है, तो संसार में धर्म यही है कि आपके विषय में चर्चा की जाए। और यदि आप पुनः गोलोक वृंदावन धाम में चले जाओगे तो फिर धर्म कैसे करेगा व्यक्ति, नहीं प्रभु, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप हमें छोड़कर मत जाओ। संसार में इतने सारे जीव प्राणी, यदि उनको आपके विषय में कुछ सुनने को नहीं मिलेगा तो सब बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, कैसे उद्धार होगा उनका, नहीं प्रभु, नहीं, आप हमें छोड़कर मत जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के इन वचनों को सुनकर सोचा कि हाँ, यदि मानव जाति मेरे विषय में सुनेंगी नहीं तो मुझसे प्रेम कैसे प्रकाशित कर पाएंगी, हृदय में प्रेम का निर्माण कैसे होगा यदि मेरे विषय में कोई सुन नहीं सकेगा। तो देखते ही देखते उद्धव जी के भागवत महापुराण के रूप में प्रवृत्त हो गए, भागवत महापुराण के अंदर समा गए। कृष्ण साक्षात भागवतम महापुराण के अंदर सम्मिलित है। ये भागवतम महापुराण की पुराण जो है वो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में रंच मात्र भी फर्क नहीं है। शास्त्र कहता है पादो यदियो प्रथमं तु द्वितीया त्रोत्रीय तुरियो कथितो यदोरु नाभिस्तथा पञ्चम एव षष्ठो भुजा तरंगो युगल तथायो कंठस्तु रामं नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमा प्रफुल्लं एकादशो यस्य ललाटपाटं शिरो तुराघश एव भाति। यह श्रीमद् भागवतम महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अंग है। जैसे जो श्रीमद् भागवतम महापुराण के 12 स्कंद हैं, वो सारे स्कंद भगवान श्री कृष्ण के एक एक अंग हैं। कहा पादो यदि यो प्रथम तो द्वितीया, द्वितीय यानी अर्थ प्रथम और दूसरा, पहला और दूसरा जो स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण के पादो अर्थात चरण है। तृतीय और चौथा स्कंद जो है वो भगवान श्री कृष्ण के कटी के नीचे का भाग है। और नाभि तथा पंचम एवं षष्ठम, पंचम जो है वो भगवान श्री, जो पंचम स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण की नाभि का पोषण है। और उसके बाद षष्ठम जो छठा स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल है। सप्तम और अष्टम स्कंद जो है वो भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं हैं। नवम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कंठ है। और दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुखारविंद है। और ग्यारहवां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का भाल है। और तेरहवां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का तिलक है। इस प्रकार यह भागवतम महापुराण के 12 स्कंद साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। आज से हम श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपरान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। श्रीमद्भागवतम महापुराण की कथा प्रारंभ करने से पहले हमारे आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ और श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के श्री चरणों में शत शत वंदन करती हूँ। तत्पश्चात हमारे प्रिय श्री श्री राधा कुंज बिहारी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और कृपा की भीख मांगती हूँ। यहाँ पर गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप सबके समक्ष कुछ बोलने की समर्थ हो सकूं, इसके लिए कृपा की याचना करती हूँ। तत्पश्चात जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ और उसी के साथ साथ श्री कृष्ण ने आज से 528 वर्ष पूर्व श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, ऐसे परम करुणा वर्णालय कलयुग पावन अवतार परम करुणामय निताई गौरंग महाप्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, जिनकी कृपा से इस समुद्र रूपी शास्त्र के सिद्धांत को समझ सकूं और आप सबके सामने उपस्थित कर सकूं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवतम को समझने वाले चैतन्य महाप्रभु के अनुकृत्य कृपा पात्र जो श्रीमद् भागवतम महापुराण को समझकर उनकी टीका लिखे हैं, जिसमें प्रमुख हैं श्रीपाद श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और सब आचार्यों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और प्रार्थना है कि वे जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम को समझ सके हैं उसी प्रकार मैं श्रीमद् भागवतम महापुराण को समझ सकूं और आप सबको समझा सकूं। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनके तात्पर्य को पढ़कर केवल हम ही नहीं श्री प्रभुपाद जी की कृपा से आज समग्र विश्व में करोड़ों करोड़ लोग भक्ति कर रहे हैं, ऐसे श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसके पश्चात हमारे गुरु महाराज परम पूजन्य प्रातः स्मरणीय कीर्तनानंद स्वामी श्री भक्तिपाद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा और आशीर्वाद के सहारे से कुछ बोलने के समर्थ हुए हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे अनेकों शिक्षा गुरु जी जिनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, जिन्होंने हमें भक्ति करना सिखाया, शास्त्र पढ़ना सिखाया और भक्ति को जीवन में आचरण करना सिखाया, ऐसे हमारे समस्त शिक्षा गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सब धर्म प्रेमी श्रद्धालु भागवतम प्रेमी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कृपया आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवतम कथा को प्रकट कर सकूँ। एक वक्ता के ऊपर श्रोताओं का आशीर्वाद होना अत्यंत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आप सब लोग मुझ पर कृपा बनाए रखिए ताकि श्रीमद् भागवतम को आपके सामने उपस्थित कर सकूं। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें अवसर प्राप्त किया, हमें ये इतना सुंदर अवसर इस जीवन में प्रदान किया कि हम श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण कर सकें, हम श्रीमद् भागवतम को एज इट इज पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि श्री प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं, उन्हीं के शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, कुछ भी उसमें से घटाना या बढ़ाना नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं। जो शुद्ध वैष्णव बताते हैं वही सब कुछ जानने योग्य है। तो हम एज इट इज श्रीमद् भागवतम महापुराण को स्टार्ट करेंगे पहले पेज से, आमुख यानी जो दीपाचा है ना, वहां से स्टार्ट करेंगे। और उसमें श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि वास्तव में किंतु यह आवश्यकता है क्या। हर कोई अपनी आवश्यकताओं के विषय में समझता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। लोग क्या सोचते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान यही मानव समाज की आवश्यकता है, लेकिन ये तभी तक आवश्यकता है जब आप देहात्म बुद्धि में हो। जब आप देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हो तो हमारी आवश्यकता क्या। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अब मानव समाज किसी देश विशेष या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है, यानी कि इतना ज्यादा लिमिटेड नहीं है अब कि बस एक ही देश या एक ही शहर या एक ही गांव तक लिमिटेड हो जाए। यह मध्य युग की उपेक्षा अत्यधिक व्यापक है, यानी कि जो पहला मध्य युग था, जो इससे पहले युग हो चुके हैं त्रेता युग और द्वापर युग, उसके बरक्स ये बहुत ज्यादा असीम हो गया है। सबके साथ इतना ज्यादा कम्युनिकेशन हो गया, एक ही जगह तक ये अभी लिमिटेड नहीं रह गया। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक ही राज्य अथवा एक ही मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के दर्शन समग्र मानव समाज की एक रूपता पर, अथवा कहना चाहें तो जीव आत्माओं को समग्र शक्ति पर न्यूनाधिक आधारित है। मतलब वास्तविक हमारी जो आवश्यकता है उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हम श्रीमद् भागवत महापुराण के इन वचनों को समझने का प्रयास करेंगे तो समग्र विश्व की, जो समग्र जितनी भी समाज है उसकी, मानव समाज की आवश्यकता जो है वो मेन आवश्यकता ये है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। जो बहुत ज्यादा महान विचारक हैं, जो दर्शन यानी कि कामयाब जिनका नजरिया है, वो क्या चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। वास्तविक आवश्यकता क्या है? शांति। वास्तविक आवश्यकता क्या है? सुख। वास्तविक आवश्यकता क्या है? दुख के दुख, जितने भी दुख आ रहे हैं उनका क्षय करना। मतलब वास्तविक ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब होता है दुखों का नाश हो, और अगर दुखों का नाश होने के साथ साथ दूसरे दुख वापस से आ रहे हैं तो फिर वो नाश तो नहीं हुआ ना। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में वह तरीका बताया गया है जिससे जीव आत्मा के दुखों का जड़ से विनाश हो जाएगा। तो ऐसा श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अतः इसका शुभारंभ वेदांत के सूत्र जन्मादस्य यत से होता है, यानी कि जन्मादस्य, जन्म माना जन्म, आदि अर्थात पालन और मृत्यु, ये सब किसके जरिए हो रहे हैं उसकी शरण में जाएंगे तो फिर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमारा मोक्ष हो जाएगा और हमें बारंबार दुखों वाली संसार में नहीं आना पड़ेगा। इसी से श्रीमद् भागवत महापुराण का स्टार्ट होता है, यानी कि जब हम पहला श्लोक पढ़ेंगे ना उसमें है ना ऐसे जन्माध्यस्य यतोन, तो उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं जिससे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। इससे क्या होगा? संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए है, उनके कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण का उदय हुआ है। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है, यानी कि इतना बेवकूफ नहीं है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत बहुत स्ट्रगल कर सकता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इसने किसने? मानव समाज ने संपूर्ण विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। यानी कि आज अगर देखा जाए तो हमारे ये आधुनिक युग में बहुत बहुत इतने ज्यादा इन्वेंशंस हुए हैं, जिससे भौतिक सुविधाएं बहुत ज्यादा मिल रही हैं और एजुकेशन बहुत ज्यादा हो गई है, आर्थिक विकास बहुत ज्यादा हो गया, किंतु इस समाज के विराट वपु में कहीं ना कहीं कुछ चुभन है, जिसे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से झगड़े हो रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज की तो कमी है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं। अतः ऐसे दिशाबोध की आवश्यकता है, जिससे सामान्य हित के लिए मानवता शांति मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। अब उनको एक ऐसी दिशा दिखानी है जिससे जो ये द्वंद्व है, जो नफरत है, जो क्लेश है, जो ये सब चीजें जिसकी वजह से इतना आपस में झगड़े हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मारने के लिए सब तुले हुए, इतनी ज्यादा जब प्रगति हो रही है तो इतना ज्यादा आपस में द्वेष क्यों है, जिसके कारण इतनी ज्यादा प्रगति होने के बावजूद भी सब एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है, श्रीमद् भागवतम से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकीकरण के लिए एक सांस्कृतिक भेंट है। यानी अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं तो ये जो आवश्यकता, जो चीज की चुभन रह गई है ना, जो हमारे हृदय में प्रेम की कमी हो गई है, उसे प्रेम उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो जीव हैं, उन सबको दोबारा से आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगी। ये सारे दुख, ये सारे नफरतें, ये सारे जो झगड़े, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जीव देहात्म बुद्धि तक है और उससे यदि ऊपर आकर आध्यात्मिक स्टेज पर आएगा तो फिर तो नफरत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, झगड़े का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह एक सांस्कृतिक भेंट है, एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वरूप को बदलने के लिए श्रीमद् भागवतम 7.6.1 में इसकी संस्कृति की है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो। प्राज्ञो का मतलब होता है अकलमंद, जिनकी बुद्धि ठीक ठीक काम करती है उनको क्या करना चाहिए? कौमार आचरित, बहुत छोटी सी उम्र में 5 साल से लेकर आचरित, क्या आचरण करना चाहिए? धर्मान भागवतान इह, इस भागवत धर्म का आश्रय लेना चाहिए, इस भागवत धर्म को पालन करना चाहिए छोटी सी उम्र में। इसी श्री प्रभुपाद जी बोलते फिर तो हमें महाविद्यालयों में भी इसका पठन पाठन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि भागवतम की शिक्षा ये है कि बचपन से ही शिशु को यह ज्ञान देना चाहिए। क्यों बचपन से देना चाहिए? उसका उत्तर देते हुए प्रहलाद महाराज नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्मम, कि ये मानुष्य जन्म बहुत बहुत दुर्लभ मिला है हमें, बहुत मुश्किल से मिला है, इतना आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत बहुत जन्मों तक हमें भटकने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंत, बहुत बहुत करोड़ जन्मों के बाद ये जन्म मिला है। तो फिर एक तो जरा मुश्किल से मिला और आगे क्या कहा, तदप्य ध्रुवम अर्थदम, और उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि वो कभी भी आपसे लिया जा सकता है, कभी भी उस मनुष्य जन्म का क्षय हो जाता है, कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो समय नष्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट से ही श्रीमद् भागवत महापुराण के इन वचनों को समझना चाहिए, उनको श्रवण करने का समय नहीं। तो कोई ये कह सकता है कि हाँ प्रहलाद महाराज ने कहा है बचपन से स्टार्ट करना चाहिए, अब तो हम जवानी की दहलीज को पार कर चुके तो हमारे लिए नहीं है, या फिर कोई बोलेंगे कि भाई हम तो बूढ़े हो गए अब हम क्या करें सुनकर। नहीं, प्रहलाद महाराज के कहने का आश्रय ये है कि जो अकलमंद है वो उसी समय से स्टार्ट करेगा जिस समय से उसे थोड़ी सी भी अक्कल आ जाए कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो फौरन से आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने का स्टार्ट करना चाहिए। उसको धर्मान भागवतान यह श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने के लिए उत्साहित होना चाहिए। मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है उसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। कौन से सिद्धांतों का अभाव? यहाँ पर श्रीमद् प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ईश्वर विहीन यानी कि भगवान का कोई तस्वर नहीं है, भगवान भगवान के विषय में कोई बात नहीं करता है, बाकी केवल कैसे अपने जीवन को सुखी किया जा सके, कैसे इन दुखों से छुटकारा लिया जा सके, यही उसूल है। ईश्वर यानी सर्वशक्तिमान विद्यमान नहीं, और भागवतम बताता है ना ऐसे कि ईश्वर यानी सर्वशक्तिमान विद्यमान है, जिससे प्रत्येक वस्तु का उत्पूत हुआ है, सबका पालन और जिसमें विश्रांति के लिए सबका विलय हो जाता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत की खोज के लिए जो प्रयास किए हैं वे पर्याप्त हैं, किंतु तथ्य यही है कि प्रत्येक वस्तु का परम स्रोत एक ही है। इस परम स्रोत की अत्यंत सुंदर एवं प्रामाणिक व्याख्या श्रीमद् भागवतम में दी गई है। मतलब जो भौतिक विज्ञान है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन जब तक उसके अंदर स्रोत यानी जो संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्येक वस्तु का परम स्रोत भगवान श्री कृष्ण जब तक एक नहीं हो जाते, तब तक ये समस्त वस्तुएं जो हमारी सुविधा के लिए दी गई हैं वो सब हमारे दुख का कारण बनती रहे। लेकिन जब हम अपने हर कर्म में भगवान को एड कर देते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर कोई भी कार्य किया जाता है, तभी वो समस्त दुखों का अंत करा सकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने अपितु ईश्वर के अपने संबंध को, ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान है। मतलब भागवत महापुराण पढ़ने से ना केवल हमें उसका पता चलेगा जो प्रत्येक वस्तु का परम स्रोत है, ना केवल भगवान के विषय में जानेंगे अभी तो भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसका पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होगा, और इतना ही नहीं अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान कि हमारा जब हम जीव आत्मा इस संसार में आते तो हमारा क्या कर्तव्य होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह संस्कृत भाषा में ओजपूर्ण पाठनीय सामग्री है, बहुत ज्यादा बहुत ही सुंदर पढ़ने की एक सामग्री है हमारे पास श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई कि इसका अब अंग्रेजी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे कि इसके सतर्क पठन मात्र से, सिर्फ इसको खाली पढ़ने से ईश्वर को बलिवान दी जाना जा सकता है। व्यक्ति तब तक भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकता, भगवान को समझ नहीं सकता जब तक वो भागवत महापुराण नहीं पढ़ लेता। यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा कर सकता है, यानी उस रक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षित बन सकेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग नास्तिक होते हैं और भगवान को नहीं मानते, लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण एक बार पढ़ लेता है अच्छे तरीके से वो नास्तिकों के इन प्रहारों से अपनी सुरक्षा कर सकता है। पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार करने में समक्ष हो सकेगा, दूसरों को बता सकेगा कि वास्तविक सिद्धांत क्या है, क्योंकि जब उसको ज्ञान आएगा, जब वो भागवत महापुराण पढ़ेगा, कृष्ण के विषय में जानेगा, तभी वो कुछ बोलने का के लिए समर्थ हो सकेगा। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम स्रोत की परिभाषा से होता है। यह शिला व्यास देव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रामाणिक भाष्य है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम की शुरुआत, उसका शुभारंभ क्या होता है, भगवान की तारीफ, भगवान की परिभाषा से होता है, और यह श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रामाणिक भाष्य, यानी कि जो वेद व्यास जी ने जितने भी वेद लिखे ना, जितने भी वेद, उनके वेदांत सूत्र की ये प्रामाणिक भाष्य है, वेदांत सूत्र का निचोड़ है ये, क्योंकि जब वेद व्यास जी ने सारे वेद लिख लिए, जितने भी शास्त्र से वो सारे लिख लिए, उसके बाद भी उनको कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी, सुख नहीं मिल रहा था, बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मैंने इतने सारे वेद लिखे, शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, बट फिर भी मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। तो शास्त्र अध्ययन करने का मेन मकसद क्या है कि हमें संतुष्टि प्राप्त हो? अब हम तो शास्त्र पढ़ते हैं, आगे जाते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, लेकिन वेद व्यास जी जिन्होंने इन समस्त शास्त्रों की रचना की, जब वह इन समस्त शास्त्रों को पढ़ रच कर उनको लिख कर जिनको पूरा कंठस्थ थे, वो फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए, तो परेशान हो गए कि जब मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो पढ़ने वाले कैसे होंगे। तो वेद व्यास जी के गुरु महाराज चांदे कौन है? नारद जी उनके समक्ष आए और नारद जी से कहा, गुरुदेव मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, मेरे हृदय से क्लेश खत्म नहीं हो रहा है, मुझे सुकून नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तब नारद जी ने उन्हें कहा कि तुमने बहुत सारे वेद लिखे, बहुत सारे शास्त्र लिखे, लेकिन जिसमें कर्म कांड और ज्ञान कांड इत्यादि को तुमने बहुत महत्व दिया, लेकिन प्रेम के लिए कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं लिखा जिसमें भगवान और जीव आत्मा के प्रेम का संबंध निर्माण हो सके, ऐसा तुमने कोई शास्त्र नहीं लिखा, इससे तुम्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए तुम लिखो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण के जिसके अंदर उनके दोस्तों के साथ, उनकी सखियों के साथ, उनके समस्त मित्रों के साथ, जीव आत्मा के साथ भगवान का प्रेम का आदान प्रदान हो, ऐसे ग्रंथ की रचना करो, श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना करो, तो तुम्हारे हृदय को संतुष्टि प्राप्त होगी। और जब श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना की, तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और रचने का सोचा नहीं, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों का सार है। आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो क्रमशः नौ स्कंदों से विकसित होकर भागवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है, यानी कि स्टार्ट से लेकर नौ स्कंद तक हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इस योग्य हो जाते हैं कि भागवत साक्षात्कार कर सके। दिव्य ज्ञान की इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है, वह है सावधानी के साथ एक एक पद आगे बढ़ा जाए और किसी साधारण पुस्तक की भांति पढ़ने में कूद फांद ना मचाई जाए। श्री प्रभुपाद जी बोलते आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए भागवत महापुराण पढ़ने के लिए कि आप क्रमशः सीरीज में सारा वन बाय वन आप पढ़ो, ऐसा जैसे साधारण पुस्तक में कैसा होता है कि ये लाइन ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ फिर आगे बढ़ जाओ, ऐसे नहीं, कूद फांद ना मचाई जाए, अपितु इसके अध्यायों को क्रम पूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए, लाइन से उसको पढ़ना चाहिए। संपूर्ण पाठ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पहले मूल संस्कृत पाठ है, फिर इसका रोमन लिप्यंतरण शब्दार्थ अनुवाद है और तब तात्पर्य दिया गया है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं किस तरह से लिखा है, पहले श्लोक है, उसका शब्दों का अर्थ है और फिर तात्पर्य है, अनुवाद है, जिससे कि जब कोई प्रथम नौ स्कंदों को समाप्त कर ले तो उसे निश्चय ही भगवत साक्षात्कार हो जाए। अगर लाइन से हम पढ़ते हैं, भगवान की कृपा रही तो हम सीरीज में इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि नौ स्कंद पढ़ लेने के बाद आप भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाओगे। इसका दसम स्कंद प्रथम नौ स्कंदों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में से है, डायरेक्ट से भगवान की जो आनंदमय जो लीलाएं हैं, आध्यात्मिक लीलाएं हैं, वो डायरेक्ट से दसवें स्कंद में आती हैं। जब तक प्रथम नौ स्कंद को पढ़ नहीं लिया जाता, तब तक दसम स्कंद के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर चेतावनी देते हैं कि अगर आप जब तक नौ स्कंद नहीं समझोगे तो आपको दसवां स्कंद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके प्रभावों को आप ग्रहण नहीं कर सकोगे। यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, इनमें से प्रत्येक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु सबों के लिए उत्तम होगा कि वे कर्मशः एक के पश्चात दूसरे स्कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़े। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बार बार यही निवेदन कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दसम स्कंद में ज्यादा रुचि रखते हैं और पहले नौ स्कंद को पढ़ने के लिए उनके अंदर रुचि नहीं होती है, वो डायरेक्ट से दसवां स्कंद पढ़ने। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको क्रमशः एक एक स्कंद करके आगे जाना चाहिए। इससे आप आध्यात्मिक दर्शन यानी भगवत साक्षात्कार को बहुत ही अच्छे तरीके से, गहरे तरीके से इस शास्त्र के सिद्धांत को समझ सकोगे। इसलिए एक एक करके लाइन से हमको पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित कथन के आधार पर विचारक तथा समाज के नायक इसका सम्यक स्वागत करेंगे। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं और मैं इन समस्त कमियों को स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवतम का जो निम्नलिखित श्लोक है उसके आधार पर जो भी शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसका स्वागत करेंगे, उसको हार्दिक अभिवंदन करेंगे। श्रीमद् भागवतम 1.5.11 में लिखा गया है, तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम् अभद्धवत्यपि नामान्यन्तस्य यशोङ्कितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति माधव। अर्थात इसके विपरीत यह साहित्य जो अनंत भगवान के नाम यश रूप तथा लीलाओं के दिव्य महिमाओं के वर्णनों में परिपूर्ण है, एक दिव्य रचना है जो इस विश्व की कुमार्गगामी सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो किंतु पवित्र एवं धर्म अनुष्ठित साधुजनों के द्वारा सुना और गाया और स्वीकार किया जाता है। मतलब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी किताबें हैं जिनमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो बताने वाला होता है बहुत ही एक्सपर्ट होता है, उसका बोलने का तरीका अच्छा होता है और वो बहुत ऐसी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें बताता है। वो जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है बोलने वाला, लेकिन ऐसे भले एक्सपर्ट वाले जितने भी श्लोक हों, जितने भी शेर वो बना रहा है, जितनी भी बातें बता रहा है, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको सुकून ले सकती हैं, मजाक आ सकता है, लेकिन वो सब कौवों के रहने की जगह है। यानी कि जिस तरह कौवे किस तरह गंदगी में मुंह मारते हैं इसी तरह, लेकिन यदि श्रीमद् भागवतम जैसा साहित्य जिसमें केवल भगवान श्री कृष्ण की मुख्य लीलाएं बताई गई हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के साथ उनके प्रेम के आदान प्रदान की बातें बताई गई हैं, तो जो साधुजन होते हैं किंतु पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधुओं के द्वारा सुना गया और स्वीकार किया, तो अच्छे लोग जो है ना वो ये नहीं देखते कि आप कितना अच्छे तरीके से बता रहे हो, जो बताने वाला है उसके अंदर की खामियां नहीं देखते, वो देख रहे हैं कि वो जो बता रहा है कितना पवित्र है, कितना अच्छा है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझ में और मेरे शिष्यों में बहुत सारी अवगुण हैं, बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन जो शास्त्र हम पढ़ के बता रहे हैं, जो बात हम आपको बता रहे हैं, वो शत प्रतिशत आपके कल्याण के लिए है, तो कृपया उसको स्वीकार कीजिएगा, हमारी अवगुणों की ओर मत देखिएगा। ओम तत्सत। अभय शरणार्विद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो कल से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की भूमिका प्रारंभ करेंगे, उसके बाद श्लोक स्टार्ट करेंगे। कृपया आप सब मेरे साथ दीजिएगा। धन्यवाद।